हरे कृष्णा, आज का विषय है गुरु क्या और क्यों। एक समय एक व्यक्ति ने जब श्रील प्रभुपाद से दीक्षा लेने की इच्छा व्यक्त की, श्रील प्रभुपाद उसे तुरंत दीक्षा देने के लिए सहमत नहीं हुए। वहां बैठे श्रील प्रभुपाद के एक शिष्य ने उसे जानकारी दी कि उसे दीक्षा के स्तर तक आने के लिए सभी प्रकार के मादक पदार्थों को छोड़ना होगा, सभी प्रकार के अवैध संबंधों को त्यागना होगा, मांस अंडे एवं मछली इत्यादि खाना बंद कर सभी प्रकार का जुआ खेलना बंद करना होगा और नियमित रूप से हरे कृष्ण महामंत्र का 16 माला जप करना होगा। और यदि तुम इन नियमों का पालन नहीं भी कर सकते, श्रील प्रभुपाद ने कहा, तुम किसी भी स्थिति में जप तो प्रारंभ कर सकते हो, क्योंकि जप करने से भविष्य में इन बुरी आदतों को छोड़ना आसान हो जाएगा, किंतु दीक्षा लेने के लिए इन सभी नियमों का पालन करना अत्यावश्यक है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार 4 प्रकार के मुख्य पाप है, अवैध संबंध, मांसाहार, नशापान एवं जुआ खेलना। यह सुन उस व्यक्ति ने शंका व्यक्त की, क्या चाय एवं कॉफी भी वर्जित है? श्रील प्रभुपाद ने कहा, हाँ वे भी नशीली है। पान चाय, पान का अर्थ है नशापान, धूम्रपान, सुपारी के बारे में आपका क्या कहना है? स्वास्थ्य संबंधी तर्क देते हुए उसने पूछा, क्योंकि यह तो पाचन में सहायता करती है, इसके खाने से मुंह में लार आती है, शराब भी पाचन में सहायक है। प्रपद जी हंसते हुए उत्तर देते हैं, वह भूख भी बढ़ाती है। सभी यूरोपी बहुत अधिक मात्रा में खाने से पहले शराब पीते हैं। मैं हवाई जहाज में देखता हूँ और शराब पीने के बाद वे बहुत खाते हैं। अंततः हमें यह भौतिक जगत छोड़ना है। यदि हम इसके प्रति आसक्त हो गए, हमें पुनः यहाँ जन्म लेना होगा। बिना समझौता किए श्रील प्रभुपाद ने उत्तर दिया। वह व्यक्ति समझ गया था, एक प्रवचन में गुरु की योग्यताओं और महत्व के विषय में श्रील प्रभुपाद अपने शिष्यों को बताते हैं। वास्तविक गुरु कभी भी नियमों के पालन में समझौता नहीं करेंगे, श्रील प्रभुपाद ने समझाया, क्योंकि वे चाहते हैं कि उनके शिष्य इसी जन्म में इस भौतिक जगत से मुक्त हो। श्रीमद् भागवतम में बताया गया है, जो व्यक्ति अपने शिष्य को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त नहीं कर सकता, वह गुरु बनने योग्य नहीं है। कोई भी अचानक स्वयं से गुरु नहीं बन सकता, गुरु बनने से पहले व्यक्ति को आदर्श शिष्य बनना होगा। जब श्रील सनातन गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण स्वीकार की, उन्होंने जिज्ञासा की, मैं कौन हूँ? मैं 3 प्रकार के तापों को क्यों भोग रहा हूँ? सर्वप्रथम व्यक्ति को गुरु की शरण स्वीकार करने और उनसे प्रश्न पूछने की पद्धति की जानकारी होनी चाहिए। सनातन गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण स्वीकार कर उनसे निर्देश प्राप्त किए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी उन्हें प्रचार की आज्ञा इसलिए प्रदान की, क्योंकि उन्होंने एक शिष्य के उचित व्यवहार से कृष्ण कृपा को प्राप्त किया था। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी से कहते हैं, कृष्ण शक्ति धर तुमी जान तत्व भाव, अर्थात क्योंकि आपके पास भगवान कृष्ण की शक्ति है, आप निश्चित ही ये सब जानते हो। श्री चैतन्य महाप्रभु का उद्देश्य पूरे विश्व में कृष्ण भावना का प्रचार करना है, इसलिए वे सनातन गोस्वामी को इस कार्य हेतु विशेष शक्ति प्रदान कर रहे हैं। कृष्ण शक्ति बिना ना है नाम प्रचारण, अर्थात कृष्ण की शक्ति प्राप्त किए बिना कोई भी हरि नाम का प्रचार नहीं कर सकता। जिस प्रकार एक योग्य वकील को भी अपने मुवक्किल की ओर से कानूनी कार्यवाही करने हेतु अधिकार प्राप्त करना होता है, उसी प्रकार जब तक हमें श्री कृष्ण की ओर प्रचार करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता, प्रचार करना संभव नहीं है। क्योंकि हम कृष्ण भावना का प्रचार करने की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए हमें उस अधिकार को प्राप्त करने के योग्य होना होगा। प्रचार करना कोई सरल कार्य नहीं है, पहले हमें अधिकार प्राप्त करना होगा। और ऐसा भी नहीं है कि यह अधिकार किसी पेड़ पर लटका है और आप इसे वहां से ले ले। नहीं, यह अधिकार कैसे प्राप्त किया जाए? श्रील नरोत्तम दास ठाकुर श्री गुरु की वंदना में इसका वर्णन करते हैं। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सदमा वंदे मुई सावधान माते। हमें सावधानी पूर्वक गुरु की शरण स्वीकार करनी होगी, क्योंकि उनके पास कृष्ण शक्ति है। तत्पश्चात यहार प्रसादे भाई ए भव तरिया आए, कृष्ण प्राप्ति हो यहाँ होते। आपको गुरु की कृपा प्राप्त होगी। वह गुरु कृपा क्या है? मेरी बीमारी ठीक कर दो। नहीं, यह गुरु कृपा नहीं है। बीमारी को ठीक करने के लिए डॉक्टर के पास जाओ। गुरु के पास जाने की क्या आवश्यकता है? किंतु लोग गुरु के पास आकर कहते हैं, आप कुछ चमत्कार करके दिखाइए। वे कुछ चमत्कार देखते हैं और उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं, किंतु गुरु का वास्तविक चमत्कार है यहार प्रसादे भाई ए भव तरी आए, इस भव सागर को पार करना, जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति। यह वास्तविक लाभ है, न कि टूटे पैर को सही करवाना और कुछ समय बाद टूटे पैर के साथ पुनः आना। वास्तविक गुरु वह है जो आपको कृष्ण दे सके। श्री कृष्ण अपने भक्तों की संपत्ति बन जाते हैं। सभी वेदों का अध्ययन करने पर भी आपको कृष्ण प्राप्त नहीं हो सकते। नरोत्तम दास ठाकुर आगे लिखते हैं, गुरु मुख पद्मा वाक्या चिते ते करिया एक्या, आरना करिया मने आशा, स्वयं के विचार निर्माण करने का प्रयास मत करो। गुरु के शब्दों को स्वीकार करो, उनका पालन करो। इसकी चिंता मत करो कि आपकी आध्यात्मिक प्रगति होगी या नहीं, किंतु गुरु के शब्दों को स्वीकार कर उनका पालन करो। श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति। आप आध्यात्मिक चेतना में प्रगति करना चाहते हैं, यदि आप अपनी श्रद्धा को गुरु के चरण कमलों में लगाते हैं, आप प्रगति करेंगे, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। ये प्रसाद है पूरे सर्व आशा। हमारी अनेक इच्छाएं हैं, किंतु यदि गुरु के चरण कमलों में हमारी दृढ़ श्रद्धा है, स्वयं ही सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। चक्षुदान दिले ए जन्मे जन्मे प्रभु से। गुरु का कार्य है चक्षुदान देना। हमें इस भौतिक जगत के अंधकार में रखा गया है और गुरु का कार्य है उसे खोलना, शिष्य को प्रकाश में लेकर आना। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो। वह दिव्य ज्ञान क्या है? दिव्य ज्ञान है कि हम सभी श्री कृष्ण के दास हैं और हमारा एकमात्र कार्य उनकी सेवा करना है। हम अनेक चीजों के दास बन चुके हैं, समाज, देश, पत्नी, बच्चों, कुत्ते इत्यादि के दास। अब हमें श्री कृष्ण का दास बनना चाहिए। प्रेम भक्ति यहाँ होते अविद्या विनाश आते, वेदे गाय यहाँ रच चरिता। गुरु की कृपा से हमें प्रेम भक्ति प्राप्त होगी। प्रारंभ में हमें शास्त्रों एवं गुरु द्वारा दिए गए नियमों के अनुसार वैदिक भक्ति का पालन करना होगा। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बताते हैं कि जो व्यक्ति स्वयं की बनाई विधि का पालन करता है, वह ना तो सफलता प्राप्त करता है और ना ही सुखी होता है। भगवत धाम वापस जाने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। जब हम धीरे धीरे विधि मार्ग का पालन करते हैं, धीरे धीरे हम भगवत प्रेम प्राप्त करते हैं, जो सबसे ऊंचा है। जैसा कि भारत में पहले छोटी लड़की का विवाह 10 या 12 साल की उम्र में कर दिया जाता था, उसे पति से प्रेम के विषय में अधिक ज्ञान नहीं होता है, तो वह विधि मार्ग के समान है। घर के बड़े लोग उसे अपने पति को कुछ लड्डू इत्यादि देने के लिए देते हैं और वह उसे ले जाकर अपने पति को देती है। इस प्रकार धीरे धीरे जब वह बड़ी हो जाती है उसे और निर्देशों की आवश्यकता नहीं होती। उसे मालूम होता है कि कैसे उसे अपने पति की सेवा करनी है। वह प्रेम है किंतु प्रारंभ में नियमों का पालन आवश्यक है। प्रेम भक्ति यहाँ होते अविद्या विनाश आते। जब तक हम भौतिक जगत की अज्ञानता से मुक्त नहीं होते कृष्ण प्रेम का प्रश्न ही नहीं उठता। यदि आप वास्तव में कृष्ण भावना में प्रगति कर रहे हैं स्वाभाविक रूप से भौतिक भोग के प्रति विरक्त हो जाएंगे। जैसे जब आप भोजन करते हैं स्वाभाविक रूप से आप अपनी भूख भी मिटाते हैं। इसलिए कृष्ण भक्ति का अर्थ है कि हम अपने आप ही अपनी सभी इच्छाओं की संतुष्टि भी कर रहे हैं। जितनी अधिक हम कृष्ण भावना में प्रगति करेंगे उतनी ही हमारी भौतिक इच्छाएं नहीं रहेंगी। हाँ हाँ प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया। हमें गुरु के चरण कमलों का आश्रय लेना चाहिए। गुरु पूर्णिमा के दिन शिष्य गुरु के प्रति वर्ष में एक बार अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता है। एक अन्य अवसर पर परम पूज्य तमाल कृष्ण गोस्वामी ने एक सुबह की शेर के दौरान श्रील प्रभुपाद से गुरु पूर्णिमा का महत्व पूछा। श्रील प्रभुपाद ने उत्तर में केवल इतना ही कहा, वही जो आप रोज कर रहे हो गुरु पूजा। प्रतिदिन गुरु पूजा कृष्ण भावनामृत आंदोलन का एक अभिन्न अंग है। साधारणतया मायावादी सभी गुरुओं को वर्ष में एक साथ पूजते हैं, जिसे गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। किंतु श्रील प्रभुपाद ने अपने अनुयायियों को विशेष निर्देश दिया है और कहा कि उनके अनुयायियों को प्रतिदिन गुरु पूजा और प्रत्येक गुरु के आविर्भाव दिन पर वार्षिक व्यास पूजा आयोजित करनी चाहिए। गुरु की उपासना शिष्य की ओर से प्रेम भरी कृतज्ञता की अभिव्यक्ति है।
हरे कृष्णा। अगर आप चाहते हैं ऐसे धार्मिक मैसेजेस हर दिन आपको प्राप्त होते रहे तो अपने नाम और शहर के साथ 9987949494 9987949494 स्कॉन डिजायर ट्री के नंबर पे मैसेज करें। धन्यवाद।